بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بعد درس یہاں سے شروع ہوئی کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الخامنائی حفظہ اللہ نے کچھ حال ہی میں ایک سپیچ کی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کافی انہوں نے تاکید کی اور دنیا کے مستقبل کو لے کر اور مستقبل میں اس کے کردار کو لے کر. تو اس کے بعد اگرچہ ہمارا پیشہ یا ہمارا شعبہ پروفیشنلی ہم اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن آج کی دنیا میں انفارمیشن اور معلومات کی جو آسانی اور دستیابی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر جرأت کیا اور کچھ آرٹیکلز میں نے لکھے. تو بعض مومنین کی طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ اگر ہو سکتا ہے تو ان آرٹیکلز کو ویڈیوز کی شکل میں لایا جائے. ظاہر ہے بہت ساری مصروفیات ہیں اور میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پروفیشن کا, تو مجھے یہ جرأت کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آ رہی تھی, لیکن انہی آرٹیکلز کو میں ایک آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں چاہوں گا کہ پیش کروں. اور پہلے وہ جو ایک کوٹیشن ہے جو رہبر کی سپیچ کے سے اردو ٹرانسلیشن میں ان کے ٹویٹر ہینڈل پر نشر ہوئی, تو اس سلسلے میں میں اس کو پڑھ لوں, اس کے بعد پھر جو آرٹیکل اس کے اوپر لکھے تھے دو آرٹیکلز وہ میں بیان کروں. البتہ یہ مضامین کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فی الحال صرف دو ہی آرٹیکل اس کے دو ڈفرینٹ پہلو کے اوپر لکھے گئے ہیں. رہبر فرماتے ہیں کہ مستقبل میں دنیا کا جو انتظام اور انسرام ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت اہم رول ہوگا, اور لہٰذا اس پوائنٹ کے اوپر بہت توجہ اور غور و خوض کرنی چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں ہمیں اتنی محنت کرنا چاہیے کہ اس میدان میں ہمارا ملک صف اول کے 10 ممالک میں اپنی جگہ بنائے. یہ رہبر کی سپیچ کے کچھ الفاظ تھے. اس کے بعد ایک آرٹیکل میں نے لکھا اردو زبان میں, وہ آرٹیکل کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی اہمیت سے اب کون واقف نہیں ہے کہ جس نے ہماری مادی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے. شروع میں جب کمپیوٹر کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ صرف معمولی حساب و کتاب کے لیے ہی استعمال کیے جاتے تھے, لیکن آج کمپیوٹر اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کی مدد سے ہر مشکل سے مشکل اور پیچیدہ کاموں کو بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے, اور انسانوں کی مدد کوئی خاص مدد کے بنوان معذرت انسانوں کی مدد یا کوئی خاص مدد کے بغیر یعنی انسانوں کی کوئی خاص مدد کے بغیر ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے کمپیوٹر مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں. مصنوعی ذہانت دراصل کمپیوٹر کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مصنوعی ذہانت کے حامل سافٹ ویئر اپنے اندر موجود غلطیوں کو خود ہی درست کرتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان میں اس قسم کے خودکار پروگرام پہلے سے فیڈ کیے جاتے ہیں. بطور مثال جب آپ گوگل پر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو گوگل مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس کو جانچ کر سب سے بہترین جو مواد اور ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, اور جب آپ فیس بک کو اوپن کرتے ہیں تو فیس بک آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف وہی تصاویر اور سٹیٹس آپ کو دکھاتا ہے جو کہ آپ پسند کرتے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض اوقات فیس بک انتظامیہ بھی اپنی دلچسپی کا مواد آپ کو دکھانا چاہے. اس کے علاوہ بغیر کسی ڈرائیور کے خودکار چلنے والی گاڑیاں, موبائل فون, لیپ ٹاپ میں موجود پرسنل اسسٹنٹ جن سے آپ ہر طرح کی معلومات پوچھ سکتے ہیں, یہ تمام مصنوعی ذہانت پر ہی کام کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ میں اپنے لیپ ٹاپ کے ڈرائیور تلاش کر رہا تھا, اور لہٰذا مجھے کمپنی نے ایک ایسا مددگار یا اسسٹنٹ سافٹ ویئر دیا کہ جس کو میں اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کرنے کے بعد اسے چلاؤں تو وہ خود ہی میرے لیپ ٹاپ کی جتنے بھی ضروری ڈرائیورز ہیں اسے اپڈیٹ کرتا ہے اور انسٹال کر لیتا ہے. اگر ہم اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے مراد ایسی مصنوعی نظام ہے جو انسانی ذہن اور رویوں کی طرح عمل کرتے ہیں, جس نے پیچیدہ حالات کو سمجھنا, انسانی سوچ کے طریقہ کار اور استدلال کی تکنیکوں کی تقلید اور کامیابی سے ان کا جواب دینا سیکھنا اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور مسائل کو حل کرنے کی استعداد وغیرہ اس پورے جو ہے مصنوعی ذہانت کے اندر شامل ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ خود انسان کے بنائے ہوئے سسٹم سے ہی ممکن ہو رہا ہے. اب آتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا یوز کہاں پر ہو رہا ہے, استعمال کہاں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ باقی نہیں بچتا कि जहां मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल न किया जा सके। बतौर मिसाल सेहत के शोबे में बीमारियों की रोकथाम को लेकर, बीमारियों को समझने, उसको आइडेंटिफाई करने, तशखीस देने और इलाज और सर्जरी तक मस्नूई ज़हानत से की जाती है। इत्तेफाकन मैं कैसे पाकिस्तानी मोमिन डॉक्टर को जानता हूं, जो इस वक्त दुनिया के उन 25 डॉक्टरों में से एक हैं जो रोबोटिक सर्जरी करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह तालीम के मैदान में मस्नूई ज़हानत जो तलबा के सीखने, सिखाने और समझने के हवाले से है, मुशावरत के हवाले से, टैलेंट की शिनाख्त के हवाले से, माशियात और इकोनॉमी के मैदान में बेहतर जो है एक तजिया कर सकता है, मस्नूई ज़हानत कर सकती है। मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अच्छी जो है तखमीने, अंदाजे, तजिये पेश कर सकते हैं। पैसे और सरमाए से मुतल्लिक तमाम शोबों में मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। कारोबारी मैदानों में मुख्तलिफ तरीकों से कारामद हो सकता है, बेशुमूल सार्फीन की खदमात, मुलाजमीन को कंट्रोल करने का तरीका, बहुत सारी जो मेगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनका सिस्टम वगैरह है। और इस वक्त जैसे कि बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही हैं, अमेजोन और दीगर। इसी तरह कानून और इंसाफ के मैदान में ये मजीद समाजी इंसाफ और इस्लाहात ला सकता है, उसमें मददगार आमिल बन सकता है। इंतजामी और ब्यूरोक्रेटिक जो हिस्से हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बेहतरी पैदा कर सकता है। इसी तरह ज़रई पैदावार ज़रात के शोबे में भी जो है बहुत ही मुस्बित रोल प्ले कर सकता है मस्नूई ज़हानत। डेटा की तशरीह करना, उसको समझना, एनालिसिस करना, खासकर जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसको एनालाइज करने में बेहतर अंदाज से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। यानी कि खुलासा ये है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर हिस्से में, यानी एक मोबाइल फ़ोन जो हमारे हाथ में होता है उससे लेकर स्टोर में ख़रीदारी तक, हर जगह जो है मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नज़र आता है। एक बात जो अहम है वो ये है कि जब हम मस्नूई ज़हानत की बात कर रहे होते हैं तो एक्सपर्ट कहते हैं कि हरगिज़ वो रोबोट नहीं है, मुराद नहीं है। रोबोट के अंदर मस्नूई ज़हानत यूज़ हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो सकती है, और नहीं जो यूथ के लिए अर्ज़ कर दूँ साइंस फिक्शन फिल्मों में जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं और गैर हकीकी मनाजिर होते हैं वो भी मुराद नहीं है। बल्कि मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंसिस की एक शाख है जिसका बुनियादी मकसद ऐसी जहीन मशीन तैयार करना है जो इन कामों को अंजाम देने की सलाहियत रखती हो जिनके लिए इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। मस्नूई ज़हानत दरअसल कंप्यूटर के लिए इंसानी ज़हानत की एक नकल है, और मस्नूई ज़हानत एक मसलन एक ऐसा इंसान नुमा मशीन है जो मसलन इंसान की तरह सोचने के लिए प्रोग्रामिंग की गई है उसके अंदर, और उसके अंदर इंसानी रवियों की एक कॉपी डाली गई है। और ये तारीफ उन तमाम मशीनों पर भी लागू की जा सकती है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करती हैं और मसाइल को हल करने, सीखने और कामों को अंजाम देने, टास्क को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं। बेसिकली तीन इसके पिलर बयान किए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके, उसमें तो एक है कि वो सीखना है, किसी चीज़ को लर्निंग करना है, सीखना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, उसको मुकायसा करके नतायज लेना है, और फिर उसे समझकर उस पर अमल दरामद करना है। ये तीन जो बड़े फेसिस बताए हैं जो कि इंसानी दिमाग से रिलेटेड हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही हमारी जिंदगी का हर गोशा घर से बाजार तक मस्नूई जहानत पर इनसार कर रहा होगा। यहाँ पर इस मजमून के पहले हिस्से में ये भी एक गुजारिश की गई कि जैसे कि ईरान में हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई हफिज़हुल्लाह ने नुमाया इल्मी और साइंसी शख्सियात से मुलाकात में फरमाया था कि मुस्तकबिल में दुनिया के इंतजाम और इंसराम यानी कंट्रोल, दुनिया के तमाम उमूर की मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक बड़ा रोल होगा इसमें, तो लिहाजा जो है हमें चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे दें, नई नस्ल को इस तरफ रागिब कराएं जो कैरियर गाइडेंस वगैरह के काम करते हैं, उनके हवाले से, तालीम के हवाले से हमारी नई नस्ल को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। मैंने शुरू में अर्ज किया कि मेरा ताल्लुक बेसिकली इस्लामिक उलूम से है और मैं इसका प्रोफेशन नहीं हूँ, लेकिन मैंने चार मुख्तलिफ जबानों में आर्टिकल्स पढ़े, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को देखी, कुछ एक्सपर्ट से डिस्कस किया, उसके बाद फिर मैंने ये आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। अब इसका जो अगला हिस्सा है आर्टिकल का वो ज़्यादा हमारे लिए मुमकिन है कि एक दीनदार के हवाले से जो है अहम है, वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक ये बातें भी, खासकर जो गैर दीनी सोसाइटीज़ हैं उनमें ये बातें हो रही हैं कि मस्नूई ज़हानत का जब उरूज होगा तो इंसानी ज़िंदगी में मज़हब का जो करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और मज़हबी जो लाइफ स्टाइल और तर्ज ज़िंदगी है उसका दी एंड हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्या ये वाकई वो उनकी जो एक थ्योरी और एनालिसिस हैं वो सही हैं या गलत हैं? तो जो आर्टिकल का दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर इसको लेकर है और उसका एक कह सकते हैं आप सरनामा या मुकदमा इस आर्टिकल के अंदर बयान किया है। वो कुछ इस तरह आर्टिकल स्टार्ट होता है कि बाज़ लोग मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक अजीब बात कह देते हैं कि मस्नूई ज़हानत का उरूज इंसानी ज़िंदगी में मजहब के किरदार का खात्मा या मजहबी तर्ज ज़िंदगी का खात्मा है, क्योंकि उनके नज़दीक मस्नूई ज़हानत एक इंसानी ईजाद नहीं बल्कि जैसे कि वो एक खुदा है, नऊज़ुबिल्लाह। ये इंतहाई गलत सोच है। दरअसल इस ख्याल के सब यानी ये जो सोच आई है वो इस ख्याल के सबब आई है कि जिसमें ये कहा जाता रहा है हमेशा से कि साइंसी उलूम की तरक्की मजहब के वजूद के खात्मे का सबब है। ये एक थ्योरी थी शुरू में, खासकर यूरोप के अंदर जिस वक्त मजहब को इन्होंने दरवाजों के अंदर बंद कर दिया, तो उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ जराए ढूंढे कि किस तरह मजहब का खात्मा हो सकता है, क्योंकि वो सोच रहे थे मजहब उनकी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर आ रही है। तो ये मफरूजे थे उस वक्त। इसी मफरूजे को लेकर बाज ये भी कहते हैं कि देखें, मस्नूई जहानत के उरूज के साथ बहुत सी मजहबी तालीमात खत्म हो जाएंगी और पहचान शिनाख्त और मारिफत के नए जराए सामने आएंगे वगैरह वगैरह। दरअसल इस कदीम सोच के पीछे कोई जदीद थ्योरी कारफरमा नहीं है यूरोप में, क्योंकि मजहबी तशरी साइंस मुखालिफ एक तारीख रखती है, लिहाजा उन्होंने ये मफरूजा बना लिया कि जहां भी मजहब की बात होगी वहां नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। मुझे याद है कि तालिबे इल्मी के जमाने में नामवर मजहबी सोशियोलॉजी, फलसफा और इलाहियात के माहिर आयतुल्ला शहीद मुर्तजा मुतहरी की किताबों में इस मौजू को पढ़ा था कि उनका फरमाना था कि पहली बात तो यह है कि मजहब कोई ईजाद नहीं है कि किसी दूसरी ईजाद से खत्म हो जाए और नई ईजाद उसकी जगह ले ले, बल्कि मजहब इंसानी फितरत में मौजूद एक अटल और तगैयुर नापजीर हकीकत है जो बदल नहीं सकती है, तब्दीली नहीं आ सकती उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि यूरोप में मजहब के नाम पर पेश की जाने वाली इंसानी सोच दरअसल मजहबी तालीमात थी ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर कलीसा और चर्च ने साइंसी ईजादात की, खासकर जो डार्क एजेस या कुरून वुस्ता में मुखालफत की और साइंसदानों को आग की भट्टियों में जलना पड़ा। इस्लाम खासकर कुरान मजीद कायनात पर तहकीक करने, इनकशाफ करने की न सिर्फ हौसला अफजाई करता है बल्कि उसे इबादत समझता है और अदम तहकीक और जस्तजू की मुजम्मत करता है। फातबिरू या उलिल अबरार अफला यतदब्बर मसलन या फला यंदुरूना इलल उबरी कैफा खुलिकत, इस तरह की जितनी आयात हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। मस्नूई जहानत समेत साइंसी उलूम पर मुसलसल आयतुल्लाह अलउज़्मा सैयद अली अल खामेनाई अल हुसैनी जैसी टॉप की मजहबी शख्सियात की जानिब से ताकीद और बाकायदा एक टास्क देने का अमल इस बात का गवाह है कि मजहब को न तो साइंस से खतरा है और न मजहब साइंस का मुखालिफ है। इस अजीम और मुनफरिद इस्लामी दानिश्वर शख्सियत की जदीद उलूम के हुसूल को लेकर मुसलसल ताकीद इस बात की भी दलील है कि जदीद उलूम या साइंसी उलूम का हुसूल न सिर्फ इबादत में से बल्कि मजहबी फराइज में से भी है। हम वापस अपने असल मौजू की जानिब लौटते हैं कि इससे पहले यह भी बात वाजे करें असल मौजू से कि राकिब मस्नूई जहानत या इससे ताल्लुक रखने वाली साइंस के बारे में बिल्कुल भी प्रोफेशनल आशनाई नहीं रखता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जाहिर है मुझे मेरे पास कोई प्रोफेशनल आशनाई नहीं है, लेकिन आलम इस्लाम के इस अजीम रहनुमा और दानश्वर और सुप्रीम रहबर की ताकीद के बाद से अब तक दर्जनों मजामीन 4 जबानों में मुताला कर चुका हूँ, सैकड़ों बल्कि अब चले गए हैं, दर्जनों से निकल गए, इसलिए कलम उठाने पर जो है मैं मजबूर हुआ। कलम नहीं बल्कि माफ करना, लैपटॉप के कीबोर्ड पर अंगुली चलाने की मैं जो है जुरअत मैंने कर दी है। हमें मुकम्मल इत्मीनान है कि मस्नूई जहानत मजहबियात की जानिब इंसान की तवज्जो को मजीद बढ़ाने में मदद करेगी। इंसान खुदा, रूहानियत की हकीकत और इलाही कवानीन की सच्चाई और इफादियत को पहले से ज्यादा समझने लगेगा और ये बात मायानाज इस्लामी दरसगाह में इस मौजू को लेकर होने वाली तमाम इल्मी कॉन्फ्रेंसिस या सेमिनार्स भी इस बात की क्या करती हैं, ताकीद करती हैं। घंटों या बाज़ औक़ात दिनों पर मुहित इंसानी मेहनत को सेकंडों में अंजाम देने की सलाहियत रखने वाली ये टेक्नोलॉजी मजहबी रिसर्च और तहकीक इश्तिहाद जैसे अमल को बहुत ही आसान बना देगी। जैसा कि कंप्यूटर की ईजाद ने आज इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मदद की है और आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम जैसे लोग बड़ी आसानी के साथ एक क्लिक में इल्मी दरसगाहों से किसी भी किताब तक रसाई रखते हैं, और ये भी कि बराह रास्त या कुछ घंटों के फर्क के साथ योमिया होने वाली इल्मी नशस्तों और तहकीक से बहरमन हो रहे होते हैं हौज़े इल्मिया के अंदर। मैं खुद गुज़श्ता 4 सालों से कुम की इल्मी दरसगाह में होने वाली रोजाना मुख्तलिफ दरसों या क्लासों से मैं फैजियाब हो रहा हूँ और इसकी तौफीक रख रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले हमारे जमाने के अजीम मुफसिर कुरान माहिर उलूम इलाही और आरिफ बिल्ला आलिमदीन जवादी आमली हफिजहुल्ला ने यह भी इरशाद फरमाया था कि हुनर और आर्ट को मजहब की खिदमत में होना चाहिए, क्योंकि किताब मैगजीन की निस्बत इसकी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा है, क्योंकि अब लोग किताब और मैगजीन की तरफ कम जाने लगे हैं दुनिया के अंदर, और ये एक अफसोसनाक पहलू है लेकिन हकीकत है। लिहाजा हजरत आयतुल्ला जवादी आमली फरमा रहे थे कि हमें विजुअलाइज करना चाहिए, हुनर और आर्ट की तरफ जाना चाहिए, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी की तरफ, मल्टीमीडिया की तरफ, इस तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि किताब पढ़ना छोड़ देना चाहिए, किताब की जो है पढ़ने के हवाले से भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन अहम चीज़ ये कि इन टूल्स की तरफ से भी, इन टूल को भी हम यूटिलाइज करें। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जवान तुल्लाब आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा और दानश्वर और रहबर और फकीह और मुज्तहिद और वली हजरत आयतुल्लाह अल-खामेनाई की इस बसीरत आमोज नसीहत पर तवज्जो देंगे, जदीद उलूम खासकर मस्नूई जहानत के से रिलेटेड उलूम के हुजूल की जानिब भरपूर तवज्जो देंगे कि जिस पर हमारी दुनिया के मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा पहलू इन्हिसार करने जा रहा है। इंशाल्लाह इस आर्टिकल का जो तीसरी किस्त होगी तो वो भी ऑडियो वीडियो की शक्ल में आपकी सामने आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।